की भारतीय परंपरा के अनुसार स्वागत की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगी। जीवन में गुणों की खुशबू सदा यूं ही महकती रहे, स्वागत मंचासीन विभूतियों का हो रहा है लेकिन खुशबू आप तक जा रही है और आपकी तालियों की आवाज मंच तक आती रहे। बहुत सुंदर घड़ियां हैं। हम आज अपने अपने उत्तरदायित्व के लिए पुनर्जागृत हो रहे हैं। क्या समय की पुकार है, क्या दिलों की पुकार है, आज उसको सुनने का समय है। हमारे बीच बहुत ही अनुभवी साइंटिस्ट्स बैठे हुए हैं। ये वो मंच है जो आज ये चर्चा करने जा रहा है कि समय को देखते हुए हम ऐसे कैसे सिस्टम्स बनाएं जो इस संसार को, मनुष्य आत्माओं के सुख को, शांति को धार सके, उनको आगे बढ़ा सके, विकास की नई दिशा दे सके। तो आज का जैसा टॉपिक है, कॉल ऑफ टाइम, बिल्डिंग सस्टेनेबल सिस्टम्स फ्रॉम साइंटिस्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारे बीच में आदरणीय शैली दीदी है। आपको ये जानकर बहुत हर्ष होगा कि आपने 1994 से ही इस ईश्वरीय ज्ञान का परिचय प्राप्त किया और 2002 में आपने अपना पूरा जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित कर दिया। आपकी एजुकेशन भी बहुत विविधता भरी है। आपने फिजिक्स में बीएससी किया और वैल्यू एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी में एमएससी किया। फिर आपने मैनेजमेंट किया सेल्फ और क्राइसिस का एमबीए के द्वारा और फिलहाल आप पीएचडी कर रही हैं योगिक साइंसेज में। तो बहुत वंडरफुल स्पीकर हमारे बीच में हैं और आज आपको जरूर अपने दो अनुभवों से लाभान्वित करेंगी। उनके पास स्पिरिचुअलिटी का भी अनुभव है और साइंस का भी अनुभव है। बात यहां सस्टेनेंस की जब हो रही है तो अल्फ्रेड नोबल ने जब डायनामाइट का आविष्कार किया तो वो ये सोच कर किया कि जब लोगों को ये पता चलेगा कि अगर मेरे क्रोध के कारण तुम्हारा ही नहीं मेरा भी विनाश हो सकता है तो दोनों ही अपने अपने क्रोध को नियंत्रित करते हुए किसी भी तरह की विनाशकारी कदम से बचेंगे। हुआ क्या वो इतिहास है। लेकिन कोई भी चीज जब निर्माण की जाती है तो अक्सर उसका उद्देश्य तो पॉजिटिव ही होता है, जनरली पॉजिटिव होता है, लेकिन जब यूज किया जाता है तब ये हमारे हाथ में है कि हम उसे विनाश की तरफ ले जाएं या विकास की तरफ ले जाएं। तो मैं आदरणीय शैली दीदी से रिक्वेस्ट करती हूं। ओम शांति।
कैसे हैं सभी? एक्सलेंट। एंजॉय कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस को? कौन सा आनंद आ रहा है, मन का या सिर्फ बाहर का? दोनों आनंद आ रहे हैं क्योंकि फिजिकल कंफर्ट भी पूरी तरह से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज एंड राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की हमारी सी विंग, साइंटिस्ट इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स विंग, इस विंग के द्वारा आयोजित इस न्यू विजन फॉर न्यू ईरा कॉन्फ्रेंस में आप पिछले दो दिन से जो सुन रहे हैं बहुत सुंदर एक सोच और सोच को दिशा मिल रही है। आप में से कौन कौन है जो पहली बार माउंट आबू इस तरह के प्रोग्राम में आए हैं? ओ मेजॉरिटी, वेरी नाइस। सो आपके लिए तो बहुत ही नया एक्सपीरियंस होगा ये। ऐसा एक्सपेक्ट भी शायद नहीं किया होगा कि हम, भले सुना हुआ होता है हमने कि वहां जाकर जन्नत का नजारा मिलेगा या बहुत अच्छा मैनेजमेंट होगा, लेकिन आंखों देखी की बात ही कुछ और होती है। और आप सभी यहाँ साइंटिस्ट बैठे हैं, तो आप सभी भी बिना प्रूफ के किसी बात को मानते भी नहीं हैं, है ना? सो इट्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट, और मुझे बहुत खुशी है कि आज बहुत सुंदर टॉपिक लिया गया है जो आज का करंट इश्यू है। आप जितनी सारी कॉन्फ्रेंसेस या मीटिंग्स अटेंड करते होंगे या आपस में भी चर्चाएं करते होंगे इस बात पर कि सस्टेनेबिलिटी को कैसे हम इम्प्रूव करें। सो एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं शुरू करना चाहूंगी। साइंटिस्ट कौन होता है वैसे? यहां कौन कौन बैठे हैं साइंटिस्ट? जरा हाथ उठाएंगे। अच्छा, थोड़ा सोच कर हाथ उठा रहे हैं। अब बाकी इंजीनियर है, वेरी नाइस। चलो मैं जो स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूं उसके बाद मैं फिर से एक बार यही प्रश्न पूछूंगी। ये स्टोरी एक छोटे से बच्चे की, 5-7 साल का बच्चा, जैसे हम ज्ञान सरोवर के सुंदर कैंपस में देख रहे हैं बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, और जहां फूल होते हैं वहां पर तितलियां जरूर होती है ना, बटरफ्लाईज। सो वो बच्चा भी इसी तरह के गार्डन में घूम रहा था। उसके घर के बाहर ही उसके पापा ने बहुत सुंदर गार्डन बनाया हुआ था, तो उसने क्या देखा, एक कुकून है, समझते? वो तितली बनने से पहले जिस कोश में अपने आप को लपेटे रखती है, कई दिन तक वो उसमें रहती है, तो उसने वो एक कुकून को देखा जिसमें से वो तितली बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। अब सिचुएशन क्या थी कि जिस होल से वो तितली बाहर निकलना चाह रही थी वो बहुत टाइनी होल था, वो छोटा सा, और कंपैरेटिवली जो तितली के पंख थे या उसका जो पूरा एक बॉडी एंड फिजिकल उसका जो शेप था, साइज था, वो बड़ा था। तो बहुत स्ट्रगल कर रही थी तितली उस होल से बाहर निकलने के लिए। अब बच्चा बहुत काइंड नेचर का था, उसको बहुत दया आई उस तितली पर कि इतनी छोटी सी तितली, नन्हा सा जीव, और देखो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो उस दया के वश उसने क्या किया, पास में ही पड़ा हुआ एक तिनका उठाया और हल्के से उस तितली को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे इस हिसाब से हल्के से उस होल को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। रिजल्ट, बड़े आराम से वो तितली उस कुकुन से बाहर आ गई, बट वो तितली लाइफ टाइम कभी उड़ नहीं पाई। कारण? कारण प्रीमैच्योर बेबी। और यस, वो जो स्ट्रगल उसको करना था ना उस छोटे से होल से बाहर निकलने के लिए, उस स्ट्रगल ने ही उसके पंखों में वो ताकत भरनी थी जिससे वो उड़ सकती थी, बागों में खेल सकती थी, जीवन का आनंद ले सकती थी। अब गलती किसकी है, क्या उस बच्चे की? बच्चा तो बड़ा अपनी काइंडनेस एंड कंपैशन को शो कर रहा था, और रियली में उसको किसी को शो करके अवार्ड नहीं लेना था, उसको रियली में वो सिंपथी फील हुई उस तितली के लिए कि नन्ही सी तितली, उसको इतनी क्यों मेहनत करनी पड़े, और उसने क्या किया, उसको इजी करने की कोशिश की। अब मैं ये कहूंगी, क्या वो बच्चा साइंटिस्ट है या नहीं है? साइंटिस्ट का रोल क्या होता है? फाइंडिंग अ प्रॉब्लम एंड देन कोई ना कोई सॉल्यूशन उसके लिए निकालना। उस बच्चे ने एनालाइज किया तितली को, प्रॉब्लम क्या है, होल छोटा है, एग्जिट जो है वो छोटा है, एंड उसने सॉल्यूशन क्या ढूंढा, उस एग्जिट को बड़ा कर दिया। साइंटिस्ट का भी रोल यही होता है ना। सो बच्चा भी साइंटिस्ट था, और हम हर एक साइंटिस्ट है, क्योंकि हम हर एक की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ में है, फैमिली लाइफ में है, जिस सोशल सर्कल में हम रहते हैं, जिस प्रोफेशनल फील्ड में हम रहते हैं, प्रॉब्लम्स है, और हम हर कोई कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। आप एग्री करते हैं सभी? सो आप सभी यहां कौन बैठे हैं, एक बार हाथ उठाए, कौन कौन साइंटिस्ट है? अभी तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं सभी हाथ उठाएंगे। मेरी ये स्टोरी सुनाने के पीछे सिर्फ भाव ये नहीं था कि मैं ये प्रूव करूं कि आप सभी साइंटिस्ट हैं, मैं इस बात को और आगे ये बढ़ाना चाहती हूँ। अब उस स्टोरी को दोबारा से हम एनालाइज करें। प्रश्न मैंने पूछा, गलती किसकी थी, कहाँ पर प्रॉब्लम थी। अब अगेन साइंटिफिक माइंड से आप सोचिए, बच्चे ने तो अपना साइंटिस्ट वाला काम कर दिया, हुआ क्या? आप सभी को जो बुकलेट मिली है उसमें आज के सेशन का जो लिखा हुआ है उसमें मेन लाइन ही ये लिखी गई है कि वो स्ट्रगल जो लाइफ में पावर भर देता है उससे हम बच कर नहीं जा सकते हैं। लेकिन इस मोरल के साथ साथ एक मोरल और इस स्टोरी में आता है। वो क्या आता है कि हम हर कोई और मेनली साइंस, रोल ऑफ साइंस और रोल ऑफ साइंटिस्ट इज टू प्रोवाइड ईज। एम आई राइट? कुछ भी प्रॉब्लम है, कहीं भी मुश्किल है, तो उसको हमने हल करना है, उसका सॉल्यूशन देना है, लाइफ को कंफर्टेबल बनाना है। इसी के लिए हमारे सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, रिसर्च चल रही है। लेकिन वो रिसर्च करते हुए, वो एक्सपेरिमेंट्स करते हुए, वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हुए, कहीं हम उस बच्चे की तरह गलती तो नहीं कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, बॉडी में पेन है, मेडिकल साइंस ने रिसर्च किया, पेन तो मेरे नीज में हो रहा है ना, पेन तो मेरे पेट में हो रहा है ना, अगर ब्रेन तक उस पेन को पहुंचाने ही ना दिया जाए तो उस पेन का ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो उन्होंने पेन किलर्स बना दिए। पेन किलर्स ने क्या एक्चुअली पेन को किल किया? नो, जस्ट डिस्कनेक्ट किया ब्रेन को, कि ब्रेन उसको महसूस नहीं कर पा रहा। लेकिन पेन जिस प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, उस प्रॉब्लम को, शरीर की उस बीमारी को उस पेन किलर ने ठीक नहीं किया। और ही क्या होगा, लॉन्ग टर्म में पेन किलर्स लेते लेते, पेन किलर एज अ सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, लेकिन पेन किलर्स लेते लेते क्या हो जाता है, वो बीमारी तो ठीक हुई नहीं जिस वजह से पेट में या नी में या और कहीं भी दर्द था, वो तो अंदर ही अंदर बढ़ती जा रही है। और पेन किलर के साइड इफेक्ट्स जो ऐड हो जाएंगे सो अलग। क्या उस बच्चे की तरह ही नहीं हुआ ये बात? हुई ना। सिमिलरली धरती को हमने देखा कि जितना पहले अनाज उगता था, पहले जितनी फसलें आती थी उतनी अब नहीं आ रही है, धरती की उपजाऊ शक्ति कम हो गई है। हमने फर्टिलाइजर्स बनाए, उसमें केमिकल्स ऐड किए, कुछ टाइम तक हमें ऐसे लगा कि वाह, रिजल्ट तो एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा निकला। पहले एक एकड़ में इतनी फसल आती थी, अब इसके इतने गुना बढ़ गई। खूब उसका प्रचार हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुई, प्रमोट किया गया, और लॉन्ग टर्म उसको यूज करने के बाद आज इफेक्ट क्या दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है? जितनी वो फर्टाइल जमीन थी उसकी फर्टिलिटी तो कम हुई ही हुई, अब हमें और ज्यादा पावर वाले फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ते हैं, वाटर लेवल कम हो गया, पोल्यूशन जो अलग से फैला, और फूड पॉइजनिंग के जो केसेस आज बढ़ रहे हैं क्योंकि फर्टिलाइजर्स में केमिकल यूज किया जा रहा है। दिखने में वो फसल, वो अनाज, वो वेजिटेबल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन शरीर को जो न्यूट्रिशन चाहिए ना तो वो मिल रहा है, और ही कहीं ना कहीं और कई सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स का, बीमारियों का वो घर बनते जा रहे हैं। सो अगेन याद कीजिए वो स्टोरी, पर्पस गलत नहीं है, इंटेंशन गलत नहीं है, उस बच्चे को हम दोष नहीं दे सकते। सिमिलरली हम इस तरह की जिन्होंने रिसर्च करके सॉल्यूशंस खोजे उनको हम दोष नहीं दे सकते। अभी तक जो हुआ ब्रह्मा कुमारीज में, ये तो आपने सुना होगा, या वैसे भी गीता सार कहते हैं कि जो बीता सो बीता है ना, अब तक जो हुआ, लेकिन ये हमने की जरूर है गलती कि सॉल्यूशन ढूंढने के हिसाब से हम चल पड़े थे और प्रॉब्लम को और हमने बैड टू वर्स कंडीशन तक पहुंचा दिया। अब जबकि हम बात कर रहे सस्टेनेबिलिटी के, सो व्हाट डज इट मीन, क्या है सस्टेनेबिलिटी? यहां प्रोड्यूस करना नहीं कहा गया है, सस्टेन, द ओरिजिनल वर्ड इज सस्टेन। सस्टेन क्या होता है? टू चेरिश, प्रोडक्टिविटी को कंटिन्यू करना, ऑलरेडी प्रकृति हमें दे रही है। इनॉग्रल सेशन में हमारे आदरणीय सुदेश दीदी जी बहुत सुंदर बात कह रहे थे, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों अनादि सत्ताएं हैं, है ना। मतलब प्रकृति को क्रिएट नहीं किया गया है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये अनादि काल से हैं। और अनादि में भी अगर हम सृष्टि के बिगनिंग की अगर बात करें, आप में से किस किसने आर्ट गैलरी विजिट किया, यहां जो बहुत सुंदर आर्ट गैलरी म्यूजियम बना हुआ है, जरूर कीजिएगा अपने स्टे के दौरान। वहां पर सृष्टि की शुरुआत की वो सीनरी दिखाई हुई है जहां हम सभी देवी देवता रूप में थे, लेकिन हम देवता थे तो साथ में प्रकृति कैसी थी ये भी वहां दिखाया गया है। बहुत सुंदर प्रकृति जिसको हम सुजलाम सुफलाम कहते हैं, वेरी फर्टाइल, वेरी ब्यूटीफुल, ऐसी वो जमीन, ऐसी वो प्रकृति थी जो हमेशा देना जानती थी। ऐसी हमें सूर्य देवता, पवन देवता नहीं कहा, क्योंकि वो देते हैं, प्रकृति भर भर के हमें दे रही थी, इवन अभी भी देती है। हम एक बीज बोते हैं, उसकी फसलें होकर, कितने गुना होकर हमें उसका अनाज मिल जाता है। एक फल का बीज हम बोते हैं, सालों सालों तक हमें वो फल देता रहता है। प्रकृति आज भी दे रही है, प्रकृति को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन प्रकृति जो रिसोर्सेस हमें दे रही है वो आज की पीढ़ी के लिए यूज करते हुए, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के रूप में यूज करते हुए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लॉन्ग टर्म के उसके रिजल्ट को इग्नोर करें। चाहे वो अपनी लाइफ की टेम्पररी और परमानेंट या लॉन्ग टर्म वाले रिजल्ट की बात है, चाहे जनरेशन वाइज बात है। ब्रह्मा कुमारीज में इस बात को बहुत अच्छे से फोकस किया जा रहा है, और स्पेशली साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स विंग के अंतर्गत इसके लिए बहुत सुंदर प्रोजेक्ट्स लिए जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर 20 जनवरी को खास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ब्रह्मा कुमारीज के एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, और वो प्रोग्राम क्या था, जल जन अभियान का शुभारंभ, पानी की कमी, बहुत सारी जगह वो दिक्कत सामने आनी शुरू हो गई है। हम जब स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे तो बताया जाता था कि पानी बचाओ, अदरवाइज ऐसी सिचुएशन आ सकती है। जो उस टाइम बताया जाता था कि आ सकती है, आज वो यस प्रेजेंटली हम फेस कर रहे हैं, और वो दिन भी दूर नहीं। मेरे पास दो दिन पहले ही एक पिक्चर आया, किसी ने मैसेज भेजा, जैसे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल की पाइप से हम पेट्रोल भरते हैं, ऐसे ही साथ में डीजल दिखाया, ऐसे सीएनजी दिखाया, एंड फोर्थ वन इज वाटर, और नेक्स्ट फ्यूचर के लिए ये भी दिखाया था कि मे बी अपकमिंग मे बी ऑक्सीजन। आप सभी इस प्रेजेंट सिचुएशन को जानते हैं अच्छे से। अब बात है कि यहां आज हम जस्ट सस्टेनेबिलिटी को नहीं डिस्कस कर रहे, उसमें साइंटिस्ट का क्या रोल या पर्सपेक्टिव होगा ये हम देख रहे। ठीक है, हमने या हमारे से पहले जिन्होंने भी सॉल्यूशंस ढूंढे उसमें गलतियां हुई। आज हम एक आध्यात्मिक भूमि पर बैठे हैं, और यहां बैठकर क्या हम वो पावर अपने अंदर भर के जा सकते हैं कि वो गलतियां हम ना दोहराए, कर सकते हैं? तो वो हमें सोचना है। जो भी आपके साथ यहां पर आए हैं, उनके साथ बैठकर या वापस अपने वर्क फील्ड में जाकर, आप अपने उन कोलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने साथियों के साथ बैठिए, और जिस फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हैं, जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं, उसके जब भी आप सॉल्यूशंस ढूंढने जाएंगे तो इस बात को जरूर जरूर ध्यान पे रखिए। एक कहानी हम सबने बचपन से सुनी है, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, है ना। अगेन सस्टेनेबिलिटी की ही तो बात है वहां पर। प्रकृति हमें भर भर के दे रही है, लेकिन उसी प्रकृति को अगर हम उसके रिसोर्सेस को मिसमैनेज करेंगे, उसको सही रीति यूज नहीं करेंगे, नीड के बदले ग्रीड के वश होकर उसको यूज करेंगे, तो उसी किसान की तरह हमें पछताना पड़ेगा जो एक दिन सारे अंडे इकट्ठा लेने के चक्कर में मुर्गी को मार देता है, काट देता है। कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? और यहां हियर कम्स द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि ये जो फार साइटेडनेस है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट को देखने की बुद्धि, ये मेडिटेशन और स्पिरिचुअल पावर के बिना नहीं आ सकती है। ये कोई स्कूल में पढ़ाई जाने वाली या डिग्री मिलने वाली बात नहीं है कि आप फार साइटेडनेस के साथ चलो, कि जो आज मुझे लग रहा है कि परफेक्ट सॉल्यूशन है वो कल क्या फायदा या नुकसान लेकर आएगा। वो देखने की दिव्य बुद्धि मुझे मेडिटेशन से मिलेगी। जब इस बुद्धि को हम परमात्मा के साथ अटैच करेंगे, कनेक्ट करेंगे, सिमिलरली काइंडनेस तो है, कंपैशन भी है, सॉल्यूशंस भी ढूंढने हैं, लेकिन वो कितना सही हम जा रहे हैं, वो परखने की शक्ति, सही टाइम पर सही डिसीजन लेने की शक्ति, ये सारी शक्तियां, दीज आर नॉट फिजिकल। कोई जिम में जाकर ये शक्ति नहीं आने वाली है हमारे पास। ये शक्ति कहां से आएगी? इट बिलोंग्स टू सोल। ये हमारी स्पिरिचुअल पावर्स है, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बिना ये पावर्स, ये क्वालिटीज, ये वैल्यूज हम अपने अंदर डेवलप नहीं कर सकते। सो अगर हम ये चर्चा कर रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी, जो भी आज अवेलेबल है, जो हम खत्म कर चुके बस उसको तो भूल जाओ, लेकिन जो आज है उसको हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी अच्छे से प्रयोग कर सके, ऐसा नहीं कि हमें खुद त्यागना पड़े, आज की हमारी लाइफ भी कंफर्टेबल रहे, आज की प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्यूशन दे सके, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, तो उसके लिए ये जो क्वालिटीज चाहिए वो हम मेडिटेशन से अपनी सूझबूझ को और अच्छे से डेवलप करते हुए कर सकते हैं। कई बार कोई भी प्रोजेक्ट पर काम करते हुए, चाहे आप इंजीनियर्स हैं, चाहे आप साइंटिस्ट हैं, चाहे हाउसवाइफ हैं, कहीं भी काम करते हुए एक की बुद्धि हर एंगल से सोचने में सक्षम नहीं होती है। अनुभवी है आप इसके? इसीलिए तो मीटिंग्स किए जाते हैं, इसीलिए तो टीम्स बनाए जाते हैं। लेकिन उस टीम वर्क को भी इफेक्टिवली काम करने के लिए, एक दूसरे की बातों को स्वीकार करना, आपस में एडजस्ट होके चलना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, अगेन दीज आर इनर वैल्यूज। ये भी कहीं किसी स्कूल यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाए जाएंगे। तो यहां भी फिर जब हम स्पिरिचुअल बातों को समझते हैं, परमात्मा का रचा हुआ ये संसार है, उसने ये प्रकृति और हम सबको उसने रचा है, ही इज द क्रिएटर। सो उसकी रची हुई क्रिएशन का मान रखना, उसको रिस्पेक्ट देना, उसको रिगार्ड देना, ये हमारी ड्यूटी बनती है। नो डाउट परमात्मा ने प्रकृति को हमारे सुख के लिए बनाया, लेकिन उस सुख के लिए हम दूसरों को दुखी ना करें। और उस बच्चे की तरह जानबूझ के तो आप नहीं करेंगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जानबूझ कर आप किसी को दुखी नहीं करेंगे, जानबूझ कर कोई ऐसा हार्मफुल सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली ये जो गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों से अपने आप को बचाने के लिए आइए हम सभी परमात्मा से भी कनेक्ट होने का एक संकल्प ले। और यहां पर भी मैं चाहूंगी, क्योंकि बहुत छोटा सा हमारे लिए एक सेशन ये मिला हुआ है, मेरे अनुभवी भाई भी जो खुद इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने विचार रखने हैं, तो जस्ट फॉर 2 मिनट्स हम मेडिटेशन के द्वारा उस परम शक्ति, जो प्रकृति का, नेचर का और हम सब का भी क्रिएटर है, उनसे खुद को कनेक्ट करते हैं। और आज जैसे कि बताया गया था, सिस्टर शिवानी बहुत प्यारे तरीके से बता रहे थे कि इस वरदानी भूमि पर, इस स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर के बीच हम जो संकल्प लेंगे वह फलीभूत अवश्य होगा। तो आज चलिए इस प्रकृति के लिए, इसे पोल्यूशन फ्री करने के लिए, इसकी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए, इस प्रकृति के ही बने हुए इस शरीर में विराजमान अपनी सोल को, अर्थात अपने आप को आत्मस्वरूप में देखें। एक चमकता हुआ सुंदर सितारा, मन, बुद्धि और संस्कार सहित मैं एक चैतन्य शक्ति, इटर्नल एनर्जी, आत्मा। अपने क्रिएटर, अपने अति प्रिय परमात्मा पिता को, मीठे बाबा को, उसी ज्योति बिंदु स्वरूप में स्वयं के सामने देखें। परमात्मा के द्वारा सुनहरे किरणों की वर्षा खुद के ऊपर अनुभव करें। पूर्ण एकाग्रता के साथ परम शक्ति की यह गोल्डन रेज अंतरात्मा की गहराई तक अनुभव करें। उनसे निकलने वाली एक एक किरण मेरे मन को शुद्ध बना रही है। विचारों को पॉजिटिव, सकारात्मक बना रही है। उस सर्वशक्तिमान की, सर्वशक्तियों से भरपूर किरणें मेरी बुद्धि को डिवाइन कर रही है। सही गलत की समझ, उसे परखने की शक्ति, क्विक एंड वाइज डिसीजंस की पावर, डिवाइन इंटेलेक्ट, ताकि मेरा हर कर्म, मेरा हर एक्शन राइट हो, मेरे लिए, मेरे अपनों के लिए और इस पूरी प्रकृति, पूरे संसार के लिए बेनिफिशियल हो। अपनी बुद्धि को, अपने मन को उस परम शक्ति से कनेक्टेड फील करें और मन ही मन प्यारे बाबा के सामने एक दृढ़ संकल्प करें। अपने जीवन में हर ऐसे कर्म से जो किसी भी तरह प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, हम स्वयं को दूर रखेंगे। हर संभव कोशिश करेंगे इस प्रकृति को पुनः सुखदायी बनाने की, इसके रिसोर्सेस को संभालने की। अपने दोनों हाथ जोड़कर, जोड़े सभी उस परमपिता परमात्मा का और प्रकृति का शुक्रिया करें, जिसने अब तक हमें भरपूर किया है और उसी पालना के रिटर्न में अब प्रकृति की पालना करने वाले, उसकी सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने वाले हम उस प्रकृति माँ के सच्चे सपूत बनेंगे। ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। बहुत सुंदर तरीके से शैली दीदी जी ने हमको कुछ बातों की ओर ध्यान खिंचवाया। जैसे गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम जो कर्म करते हैं उसकी फल की इच्छा भले ही न करें, लेकिन कर्म का फल तो होगा, है ना। साइंस भी कहती है अगर इफेक्ट हुआ है तो कॉज तो होगा, रिएक्शन है तो एक्शन तो होगा, है ना। इसलिए दीदी ने एक बहुत अच्छी बात कही, त्रिकालदर्शी होकर सोचो। आज के शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन कहीं आगे चलकर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम न बन जाए। और परमात्मा एक बात तो डिक्लेयर कर ही चुके हैं कि सृष्टि का प्रलय कभी नहीं होता, विनाश होगा, जरूर होगा, लेकिन विनाश से उसके बाद जो रचना का आनंद हम उठाएंगे, क्योंकि कुछ चीजों का विनाश होना आवश्यक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स व्हाट इनटेक एंड, है ना, तो रेस्पिरेशन अगर हम इनहेल ही करते जाएं संभव है क्या, एक्सहेल करना पड़ेगा। इसलिए कुछ चीजों का विनाश होगा, लेकिन जैसे दीदी ने कहा, प्रकृति पुनः सुखदाई बन सकती है और हम सभी उसको बनाने के निमित्त भी बन सकते हैं। हमारी जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ थी जगदम्बा सरस्वती, जिनको हम प्यार से मम्मा कहते हैं, माँ की तरह उन्होंने हमारी पालना की, वो कहती थी चलो इस तरह से कि धरती को भी कष्ट न पहुंचे। और हम कभी कभी कैसे चलते हैं, कैसे सीढ़ियां उतरते हैं। हम सतयुग में जब जाएंगे तो स्वर्ग में न केवल हम माया जीतोंगे, विकारों के ऊपर जीत प्राप्त की होगी, विश्व के ऊपर जीत प्राप्त की होगी, हम प्रकृति जीत भी बनेंगे। लेकिन प्रकृति जीत हम तब बन सकते हैं जब हमने अभी उस प्रकृति को अपने वाइब्रेशन से सहयोग दिया होगा। कोविड टाइम्स में हमने देखा कितना हम बात करते थे एनवायरमेंटल पोल्यूशन की, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर डाले नमामि गंगे में, और क्या हुआ, एक महीना इंसान चुप होके बैठ जाए प्रकृति खुद को सुधार लेगी। जालंधर से हिमालय दिखते थे ना, हाँ कैसे दिखे, है ना। तो आज जो प्रकृति की हालत है वो प्रकृति के कारण तो नहीं है ना, इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमंस दैट हैज कॉज्ड ऑल दी प्रॉब्लम्स। तो आज भगवान ने इतना सिंपल सोल्यूशन दे दिया हमको, चुप होके बैठ जाओ ना, थोड़ी देर चुप होके बैठो तो सही ना। तो यही दीदी ने अभी हमको जो मेडिटेशन कराया, थोड़ा सा शांत हो जाओ फिर देखो कि मुझे क्या करना है, अपने चश्मे को साफ तो करो। हाँ, विंडो को साफ करने से कुछ नहीं होगा, चश्मे को भी तो साफ करो तो अपने आप साफ दिखने लगेगा। हाँ, तो इसी सफाई को कैसे हम नेचर, लेट अस रिटर्न टू द ओरिजिनल। दयानंद जी ने कहा था ना, बैक टू द वेदास। भगवान कहते हैं कुछ नहीं वेद की जरूरत, यू रिटर्न टू योर सेल्फ। तो रिसर्च, व्हाट आर द साइंटिस्ट डूइंग, दे आर डूइंग रिसर्च, दे आर नॉट सर्चिंग, दे आर रिसर्चिंग। Whatever is already there, what is science doing? It is only observing the nature, studying the nature and finding the problems which are inherent in the nature. और जहां inherent in the nature की जगह अपनी कुछ बुद्धि ज्यादा लगा देते हैं, वहीं विनाश का कार्य शुरू हो जाता है। तो इस नेचुरल रिसोर्स को यूज करते हुए, कागज जलाने के लिए भाई ठीक है मैग्नीफाइंग ग्लास रखा, कागज तो जल गया, लेकिन सारी दुनिया में मैग्नीफाइंग ग्लास रख देंगे तो क्या हाल हो जाएगा? ये प्रॉब्लम है, बस इतना ही प्रॉब्लम है। तो है तो सोलर एनर्जी, बट वो सोलर एनर्जी को हम टैप कैसे कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं? आइए हम इस बात की चर्चा सुनेंगे। आदरणीय डॉक्टर एनपी सिंह जी हमारे समक्ष बैठे हैं। आप ओएनजीसी से एज एक्स सीजीएम रिटायर्ड हैं। आपने खास सोलर एनर्जी एप्लीकेशंस में डॉक्टरेट हासिल की है और एक सरस्वती प्रोजेक्ट हुआ करता था, जो नदी गुम हो गई है उसे हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार ने कहा वापस धरती पर बहा देंगे, और जी कैसे बहाएंगे वो अलग बात है, वो भी शायद चर्चा करें हमारे साहब। जो कालिदास की बात आती है वो कैसे कैसे हमारे सरकारों के फैसलों में उजागर हो जाती है, थोड़ा सा एक ह्यूमरस टच दे दीजिएगा। आपने 11 रिसर्च पेपर्स नेशनल और इंटरनेशनली पब्लिश किए हैं, तो आइए हम सुनते हैं आदरणीय डॉक्टर एनपी सिंह जी से।
जैसा कि निधि बहन ने मेरा बड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, मैं उतना बड़ा नहीं हूं जितना उन्होंने मना दिया मुझे, लेकिन हाँ जो हमने अपने पीएचडी काम के दौरान सीखा है या उसके आगे हमने रिसर्च को आगे बढ़ाया है उसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। और लेट अस कम टू द सेशन स्टेट, ओम शांति, एंड इट इज द वर्ड ऑफ एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी। शैली बहन ने बहुत सिंपल तरीके से सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशंस को कैसे कार्यरत करके हम अपने उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। तो ये मेरे प्रेजेंटेशन का व्यू है। पहले हम लोग ग्लोबल एनर्जी सिनेरियो के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में जो एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं उसके साथ में क्या क्या इश्यूज रिलेटेड हैं वो हम जानेंगे, और देन उसके बाद रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो मेजर हैं सोलर एंड विंड उसके बारे में, और उसके अलावा जो नए सोर्सेज आ रहे हैं जैसे ग्रीन हाइड्रोजन उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन का ओवरव्यू है। तो लेट अस स्टार्ट कि वे बैक इन 1850 जो हमारे पास मेजर एनर्जी का सोर्स था वो केवल लकड़ी हुआ करता था, और उसी से सारी की सारी एनर्जीज हमारी पूरी होती थी। उसके बाद धीरे धीरे कोल बिकेम सोर्स ऑफ एनर्जी, और जो कोल माइनर्स के लिए जो कपड़े पहनाए जाते थे वो आजकल हम अपने बच्चों के जीन्स, ब्लू जीन्स जो देखते हैं, बेसिकली वो कोल माइनर्स के लिए बनाई गई थी, स्पेशली डिजाइन की गई थी, जिसको हमारे बच्चे आजकल पहनते हैं। सो उसके बाद फिर जो 1990 का जब समय आया उस समय फिर ये जो कोल बिकेम द मेजर सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एनर्जी, एंड जैसे जैसे कोल ने एनर्जी सप्लाई की उसकी डिमांड उसी तरह और से और बढ़ती चली गई। उसके बाद जब पीरियड आया 1950 के आसपास का, तो ऑयल एंड हाइड्रो एनर्जी बिकेम अनदर न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड नेचुरल गैस ऑल्सो वॉज कमिंग अलॉन्ग विद द ऑयल। पर उस समय जो नेचुरल गैस ऑयल के साथ आती थी उसको एक बेकार चीज मान के उसको जला दिया जाता था ऐसे ही, और इवन काफी लेट तक जो ऑयल के साथ में एसोसिएटेड गैस निकलती थी उसको बेकार चीज समझ के जला देते थे। लेकिन धीरे धीरे जब पीरियड आया 1950 एंड 2000 के, उसके बाद जो नेचुरल गैस थी वो एक क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी मानी जाने लगी, और उसके बाद गैस बेस्ड पावर प्लांट जो हैं वो आना शुरू हो गए। उससे पहले जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स थे उनका जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते थे, और इसी दौरान जो अपना एनवायरमेंटल कंसर्न्स थे वो आना शुरू हो गए थे। उससे पहले 1950 से पहले बहुत एनवायरमेंट के बारे में लोग बात नहीं करते थे। उसके बाद आई थिंक वन स्लाइड बैक, फिर अगर हम पीरियड 2010 से 30 की बात करें तो उसके बाद ऑल R&D एक्टिविटीज हैज बीन नाउ कंसंट्रेटेड ऑन द कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एंड दैट टू एट अ कॉम्पिटिटिव कॉस्ट। और साथ साथ में इस बात का भी ख्याल किया जा रहा है कि जो भी हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं उसके कार्बन फुटप्रिंट्स कम से कम हो, और इस प्रेजेंट समय में अच्छा कुछ ज्यादा हो रहा है, अच्छा थैंक यू। तो प्रेजेंट समय में जो ग्रीन हाइड्रोजन इज सपोज टू बी क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये स्लाइड दिखाती है कि हमारी जो प्राइमरी एनर्जी की डिमांड है वो किन किन सोर्सेज से पूरी होती है। और ओके, मैं घूम जाता हूँ, मेरे को बिजर देखना पड़ रहा है। हाँ, तो जो कोल है दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ अवर एनर्जी, एंड आफ्टर दैट ऑयल एंड गैस, न्यूक्लियर, अदर सोर्सेज, दे आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, ये स्लाइड दिखाती है कि हम इस समय जो एनर्जी हमारे पास आ रही है ओवरऑल इंडिया में 52% इज कमिंग फ्रॉम कोल, विच इज सपोज टू बी द मेजर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। तो दैट इज अ वेरी वेरी बिग कॉज ऑफ कंसर्न, दैट यू नो टेल्स अस दैट वी शुड एक्सप्लोर मोर डिफरेंट रादर सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच विल जनरेट कंपेरेटिवली और वेरी लेस अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का चार्ट आप देख रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन किस तरह बढ़ रही है, और अकॉर्डिंगली हमें अपनी एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए हमें उस तरह के साधन और ढूंढने पड़ेंगे। मैम नेक्स्ट स्लाइड। या इसमें हम देख पा रहे हैं कि 5 कंट्रीज यूएस, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, दे आर हैविंग 3/4 ऑफ द टोटल रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड, दे आर विद दीज 5 कंट्रीज। And of course, coal remains the major, you know, carbon dioxide polluting source of energy. So this is the gas demand by in our Asian countries. As we can see, the demand of gas in India is as you know close to you know China. ये slide दिखाती है कि किस तरह से जो carbon dioxide का emission है वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। पहले का जो आप अगर देख पाए 1900 से स्टार्ट करके व्हाट आई कैन सी इज राइट, तो शुरू में इसका जो स्लोप है बहुत कम है, धीरे बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन अगर आप देखें इसको 2020 के बाद का जो स्लोप है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो दैट इज अनदर स्लाइड टू शो यू दैट हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज बिकमिंग ए मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, and these are the major pollution creating activities. As you can see, coal based power station, as I just said, ki bahut zyada wo power carbon dioxide produce karte hain. Is tarah jitne bhi vehicles hain, jet truck hain, buses, aeroplane, ships, car, trains, all vehicles, all they are you know generating lot of carbon dioxide. And isi tarah jo aapke chemical industry hain, pharma industry hain, and these are the very you know major sources of carbon dioxide production. So then comes the question कि जो हमारी एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए जो हम एक्टिविटीज करते हैं, कोल बेस्ड पावर स्टेशन करते हैं, वो ठीक है एनर्जी की डिमांड के लिए हम लोग कर रहे हैं, बट उसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं एक्टिविटीज कहिए या इंसिडेंट्स जो हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं कि दोज आर अवॉइडेबल, लाइक जनरेटिंग पावर इज अ काइंड ऑफ यू नो नेसेसिटी, वी हैव टू डू इट, ट्रू दैट इट इज प्रोड्यूसिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड, बट देन still it is an kind of you know need based production, but there are activities which are you know kind of they can be avoided, but they have not been you know dealt properly. So the result you can see in next slide, man made jaise invasion of Kuwait by Iraq in 1990, you can see the kind of you know carbon dioxide being you know emitted by those wells. When Iraq could not control the wells, when they were running away from the field, कुछ नहीं किया उन्होंने, जाते जाते जितने वेल ऑयल के थे सबको आग लगा दी। Can you see, इससे बड़ी कोई मैडनेस हो सकती है, ह्यूमन मैडनेस, कि हमें तो नहीं मिल रहा है, हम जला के जाएंगे। तो वो आप इन स्लाइड्स में देख पा रहे हैं। उसके बाद ये एक बहुत बड़ा शिप था ऑयल एक्सप्लोरेशन वाला, उसमें आग लगी, तो देखिए आप उसमें क्या हाल हुआ है। एंड रिजल्ट, आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड वी कैन सी द रिजल्ट, यू कैन सी द काइंड ऑफ यू नो मैरीन पोल्यूशन इट हैज क्रिएटेड, एंड काइंड ऑफ यू नो ऑयल स्पिल दैट यू नो हैज कम अल्टीमेटली टू द ग्राउंड, सी से वो धीरे धीरे तैर के ग्राउंड पे आ गए, और ग्राउंड के बाद आने के बाद देखिए पक्षियों का और मैरीन लाइफ का क्या हाल हुआ होगा, दैट वी स्टिल आर येट टू अनदर असेस। सो इसी तरह अनदर मैन मेड डिजास्टर वाज ऑयल IOC का जो जयपुर का डिपो था, उसमें जो आग लगी उसका यू कैन सी दैट, और नॉट ओनली दैट, अब रिसेंट वार जो चल रही है यूक्रेन वाली है, वो 3 साल से चल रही है, अभी फिर से जो गाजा पट्टी वाला चल रहा है, कितना हम लोग अपने आप इस पॉल्यूशन को जनरेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, दैट टू अननेसेसरी, अगर किसी उससे कुछ कुछ किसी का भला हो रहा है, किसी का भला नहीं हो रहा है. सो दीज आर द, इससे पहले स्लाइड में ना, ये ग्रीन हाउस गैसेज हम लोग बात करते हैं, उसमें किस गैस का कितना कंट्रीब्यूशन है ये हम देख पा रहे हैं इसमें, कि कार्बन डाइऑक्साइड मेजर है, उसके बाद सीएफसी है, देन मिथेन है, ओजोन है, देन नाइट्रस ऑक्साइड है. दीज आर द मेजर यू नो गैसेज ऑफ ग्रीन हाउसेज. दिस इज द ग्लोबल टेम्परेचर राइज का आप देख पा रहे हैं, शुरू में स्लोप कम है लेकिन अभी इसका स्लोप बढ़ता जा रहा है. दैट शोज दैट कि द ग्लोबल वार्मिंग is increasing at a much larger pace than it was earlier. And same is shown in this slide, ki in our time is not, future is not what it used to be earlier. Earlier, jo scenario tha, jo logon ka soch tha, usse hum bahut bahut shift ho chuke hain, aur usme hume ab major quantum shift lane ki zarurat isliye pad rahi hai, ki jis tarah se aapne graphs mein dekha, ki kis tarah se global warming bad rahi hai, kis tarah se carbon dioxide ki percentage badhti ja rahi hai, that, you know, makes us, you know, think that what kind of, you know, future we are heading to, what kind of, you know, energy sources we are using to meet our requirement. So that there are few more examples, that excessive use of plastic and polythene leads to degradation of land as well as oceans. All the plastic that we use go to landfills or sea mein pahunch jata hai, aur uske baad marine life ko kitna tang karta hai, kitna pareshan karta hai. So that those kind of issues, I believe you people will also be having in your mind, ki bhai, there something need to be done to check them or to control, at least to our extent. So these are the environmental issue of which, you know, I think most of the scientific community and even the general masses are required to think and rethink about how to handle them or how to control, contain them. Ozone layer depletion is another thing that I have, you know, try to highlight here. Global warming is there, greenhouse gases, loss of biodiversity because of greenhouse gases. And one of the most characteristics of this environment degradation is that it affects all mankind on global scale without regard to any particular country, region or race. So the whole world is stakeholder for all this, you know, problems that are you know, related with the environment, related with the greenhouse gases, related with the pollution, associated with the energy generation. So sustainability to madam ne bahut badhiya tarike se bata diya, but still to repeat the same thing, I can read it for you, ki create and maintain in condition under which human and nature can coexist in productive harmony that permits fulfilling the social, economic and other requirement of the present and future generation. So isme hum logon ki generation theek hai, we have reached a certain stage, but then future generations hame kya kahengi ye soch ke agar hum apne energy sources ko reorient kare ya apni requirement ko reorient kare to hame solution kahin na kahin se zarur milega. So there again, as the statement of sustainability says, no measure can be sustainable until it is matched with the population growth and our energy demand. So sustainability we can achieve on personal scales also. That comes from the ideas of all of you, plus all those who are in research and you know, working in the laboratories, in the universities and institutes. So their awareness about sustainability and energy demand, it is very, very much important that until we are aware about what is being done, we will not think about the solution. So solution will come from us once we are aware about it. So industry mein agar hum energy efficient machines, energy efficient practices ko follow karte hain, तो डेफिनेटली एनर्जी हम सेव करेंगे. और एज ए पॉपुलर सेइंग गोज कि एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड, कि एज मच एनर्जी एज यू कैन सेव दैट इज एज गुड एज यू हैव जनरेटेड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो दैट यू नो इज ब्रिंग्स लॉट ऑफ सेविंग ऑन द पार्ट ऑफ एज फार एज द कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज आर कंसर्न फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन ऑफ एनर्जी. सो अगेन दीज आर द फ्यू आइडियाज. इफ suppose we, you know, double the energy by, you know, going from non-renewable to renewable sources. So these are the things that probably we can see in our future. It will not take long time to see the effect once we switch from the non-renewable to renewable sources. So few of them are the average limit, average global temperature. That's what but I said ki bhai, once the we shift from conventional sources of energy to non-conventional like solar and wind, the global rise in temperature will be curtailed. And then we can avoid up to 12 gigaton of additional carbon dioxide emission per year in 2030. 2030 is not far, it's just six years away from now. And if we double our production of our energy from renewable sources, this thing we can see in next 5 to 6 years. Please, previous slide. And we can provide 24.4 million jobs in renewable energy by 2030 compared to 11 million that we were having in 2023. Then boost the global gross domestic GDP is okay, it's related with energy production by using renewable sources. So these are the few things that we can achieve within our lifespan itself, not that we can see it after 50 years, so that I believe. So these are the technological challenges that we need to face once we shift from the conventional, from the what you call traditional sources of energy to new sources of energy. That you can see is vehicle efficiency hai, then renewable sources, and then biofuels is one of them. Then carbon capture and storage is another thing that is promoted or being researched by the scientists. And I'll show you another slide on carbon capture and storage in the earth. So these are the renewable sources of energy. Solar energy remains the biggest source of energy. And fortunately for India, our present government is putting lot of thrust on increasing the share of solar energy in our energy basket. So this is the map which shows that where we are getting maximum solar energy. As you can see, the tip of Rajasthan. So if there we get maximum solar energy in Rajasthan as well as in Jammu area. So this next slide. This slide is very important. I tell you, just this one slide shows you how powerful solar energy is. As you can see, the sun is sending energy to us, and those cubes that are indicated as gas, oil and coal and uranium, these are the total reserve of the earth. And in the corner, small corner, that is global energy consumption of the total world. Total world is having that small cube, that is the total, that indicates the total consumption of energy. And these bigger cubes, these are the total reserves that are available for gas, oil, coal and uranium. And you see the biggest cube, that is the amount of solar energy that Mother Earth is receiving every day from the sun. So that shows how powerful the energy source itself is, how limitless that source is, condition lies with us or other restrictions lies with us, how far we can go to harness that for keeping our earth clean. Chalo, next ma'am. So this is just state wise how much solar energy previous slide ma'am. How much solar energy has been energy capacity has been installed in different states of major rather. There are few more, but then I have captured only the major states which are, and you can see Rajasthan is on the top. Gujarat is next, like otherwise Karnataka. This is another important slide which shows the fall of cost of production of solar cells. As you can see, in earlier years it was such a long bar. Now it has come to 0.9 watt per cent. So that shows how scientific or technological research has led to fall of cost of production of solar cells, and thereby increasing the share of solar energy in our energy basket. So these are the that was solar photovoltaic system. These are that this one is solar thermal system where energy from solar sun is reflected to one point where that point is heated to such an extent that steam is generated and then turbine is run. So this is another type of solar. It is called solar power power tower technology. In this, you have huge spread of plane glasses. The energy from the sun is coming down, and the air underneath those glasses get heated up, and that passes through the tower. And the tower is having turbines inside, and those turbines will generate energy. This is called power tower.
Is it generating here in India also?
Not in. It's only in Australia.
Australia.
Australia. Okay. Not in India. We haven't tried it. It requires a lot of space. But then so far, no company or no government, efforts has been done in that direction. So in solar itself, we are having few. R&D trends, which includes solar refrigeration and air conditioning. This branch particularly deals with the areas where excessive heat is there. For example, in case of Gujarat, Rajasthan, where a lot of heat is there. So this technology will take solar energy, solar radiation in, and it will generate cooling effect, refrigeration, by using solar energy. So this is very useful thing, especially for large application like warehouses and very big storage capacity for somebody wish to create for the areas for the products that need to be kept under refrigerated conditions. So this is something. Then phase changing materials are there which can store the solar energy in the form of thermal energy, and when sun is not there, that thermal energy can be utilized in the night or whenever there is a cloudy days. Then green hydrogen is another energy which is coming up, and green energy is something hydrogen generated through solar energy is called green hydrogen. So these are the some wind energy product. This is wind farms. Just like a previous slide. जो छोटे छोटे जो विंड टर्बाइन्स हम लोग देख रहे हैं वहाँ पर, वो देखने में बहुत छोटे छोटे लगते हैं. अगर आप उसके एक सिंगल ब्लेड को देखिए तो वन सिंगल ब्लेड इटसेल्फ इज 141 फीट लॉन्ग. यू कैन सी इमेजिन कि दूर से देखने में बहुत छोटे छोटे लगते हैं, बट दे आर नॉट एज स्मॉल. वन ब्लेड इटसेल्फ इज अराउंड. सो अदर सोर्सेज आर ग्रीन हाइड्रोजन, ओशन वेव. सो अनफॉर्चुनेटली वेन लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई वॉज बींग observed everywhere in corona काल की oxygen की कमी आ रही है, oxygen की कमी आ रही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम try करते हैं. तो हम लोग पानी बनता है hydrogen oxygen को मिलाने से. Everybody I think they know it, and once we pass electricity through it, it will generate oxygen and hydrogen. तो ये दिमाग में रख के हमने कुछ घर में बैठे बैठे कोई काम नहीं था तो ये काम किया हमने. तो एज यू कैन सी कि दिस इज अ स्मॉल सेटअप. सोलर पैनल इज देयर, देन अ बकेट इज देयर, देन क्लीन वाटर इज देयर, देयर आर टू बॉटल्स. एंड इफ यू एनलार्ज दिस पिक्चर देन वील सी दैट कि दो बॉटल्स दे हैव इलेक्ट्रोड्स इन साइड दैट वन. सो वंस वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दोज इलेक्ट्रोड्स, यू कैन सी द हाइड्रोजन बींग जनरेटेड इन नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. इसको प्ले कर दीजिए, इसके ऊपर रख के प्ले कर दीजिए, इसी के ऊपर प्ले कर दीजिए. ये बॉटल्स वही वाली हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोड हैं अपने, एंड देन यू कैन सी इट. नहीं, वो नहीं हो रहा है. एक बार ट्राई करिए, नहीं होता तो फिर लेट अस सी. करत अभ्यास. हाँ, यू कैन यू सी दैट दिस येलो कैप बॉटल, स्मॉल टिकलिंग ऑफ गैस इज देयर. सो दैट इज बिकॉज ऑफ वी आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलर एनर्जी टू दीज बॉटल्स विच इज इलेक्ट्रोड्स इन साइड दिस बॉटल्स. नेक्स्ट चलिए. तो ये छोटा सा सिस्टम था, इसको फिर हमने बड़ा किया. सो उसमें अगर जो आप देख पा रहे हैं, देर आर टू ड्रम्स, वन इज हैविंग ब्लू कलर एंड व्हाइट, एंड फ्रॉम व्हाइट कलर वन व्हाइट पाइप इज गोइंग. सो दैट व्हाइट ड्रम इज कलेक्टिंग हाइड्रोजन एंड इट इज गोइंग इन टू माई किचन इन माई हाउस. प्लीज नेक्स्ट स्लाइड. हाँ इसको इसको प्ले करिए, आई थिंक इट शुड प्ले, दिस इज इम्पॉर्टेंट, अगर ये जल जाता. ओके ओके, ये नॉर्मल बर्नर को हमने मॉडिफाई किया है, आई विल जस्ट लाइट इट एंड आई थिंक ये घूम पता नहीं क्यों नहीं रहा. हाँ दिस इज हाइड्रोजन, यू कैन सी बर्निंग एंड दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट आई हैव डन इन माई हाउस टू जस्ट क्रिएट हाइड्रोजन. तो अभी अभी मैं इसकी लाइट ऑफ कर दूंगा तो यू कैन सी इट मोर क्लियरली. नहीं ये लाइट नहीं, ये लाइट नहीं, वो उसकी लाइट, किचन की लाइट बंद करो. नहीं ये नहीं, किचन की लाइट बंद, हाँ किचन नहीं, हो गया हो गया. राइट राइट, सो यू कैन है हाइड्रोजन बर्निंग इन द किचन, इट विल रन, आपका खाना बना देगी. मैं चाय बनाया हूं अपने घर में से, खाने तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन हाइड्रोजन से. और इसके जो अगर हम बात करें एनर्जी कैपेसिटी, एनर्जी कंटेंट की, तो इट इज 3 times मोर एनर्जी एफिशियंट देन अवर एलपीजी. अगर एलपीजी की एक केजी हम लेते हैं, इट हैज 55,000 किलो कैलोरी इन 1 kg ऑफ एलपीजी. एंड इन दिस केस सर कमर्शियल में भी थोड़े से इश्यूज, इसके इश्यूज हैं सेफ्टी के. तो जो मैं बोल रहा था कि इट इज 3 times मोर पावरफुल देन एलपीजी. सो दिस इज आई थिंक डन मोस्टली. नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन जो हमने छोटा एक्सपेरिमेंट किया था उसमें 2 bottles लगाया था, लेकिन ये बड़े वाले में हम जो ऑक्सीजन है उसको एनवायरमेंट में रिलीज कर दिया, क्योंकि दोनों को इकट्ठा रखेंगे तो हाइड्रोजन बम बन जाएगा, वो नहीं करना है. इट्स अ वेरी वेरी यू नो फ्लेमेबल एंड वेरी एनर्जी, 3 times मोर एनर्जी देन एलपीजी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. खत्म हो गया, इट्स ऑलमोस्ट फिनिश. नेक्स्ट या दिस इज द लास्ट स्लाइड, दिस इज द लास्ट स्लाइड. इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड इतनी जनरेट हो रही है उसको हम डिकार्बनाइजेशन करने के लिए अर्थ का, उसको हम कलेक्ट करके अर्थ के अंदर स्टोर कर सकते हैं, जहां जैसे हम लोग मीन्स इन ONGC वी प्रोड्यूस ऑयल एंड गैस. तो जिन वेल्स में ऑयल एंड गैस आना बंद हो जाता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पंप करके अंदर स्टोर कर दिया जाता है. ये स्लाइड वही शो करती है. नेक्स्ट देखिए, ये कंक्लूजन है दैट करंट व्हाट इट इज करंट एनर्जी ट्रेंड्स आर अनसस्टेनेबल इकोनॉमिकली सोशली एंड एनवायरमेंटली, दे आर नॉट यू नो सस्टेनेबल. देर इज स्ट्रॉन्ग नीड फॉर मेजर डिकार्बोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी सिस्टम फॉर सस्टेनेबल अर्थ एनर्जी एफिशिएंसी क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी सोलर विंड ग्रीन हाइड्रोजन आर सेंट्रल टू अचीव सस्टेनेबिलिटी मेजर टू अचीव क्लाइमेट चेंज एंड हेंस ऑल दोज मेजर्स विच यू नो आर अप्लाइड फॉर क्लाइमेट चेंज दे एनहेंस एनर्जी एफिशियंसी एंड एनर्जी सिक्योरिटी एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इट इज अवर ड्यूटी टू कंजर्व अवर रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन. थैंक यू.
बहुत बहुत थैंक्स. और ऑडियंस को भी आनंद आया. जो बात कही थी, गो बैक टू द ओरिजिनल्स, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कलेक्ट करके पानी बनाया, पानी तोड़ दो तो ऑक्सीजन मिल जाएगा. बहुत एक अच्छी सोच के साथ फिर से वही बात आ जाती है. और जोकन ज़ाइट्स ये CEO हैं, प्रेसिडेंट हैं हार्ली डेविडसन के. उन्होंने कहा है, सस्टेनेबिलिटी इज नो लॉन्गर अबाउट डूइंग लेस हार्म, इट इज अबाउट डूइंग मोर गुड. तो आई थिंक ये जो मोर गुड हुआ इसके लिए तालियां तो बनती हैं. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी आदरणीय ब्रदर SS खीची जी से. आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं और खास आपने स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, कैलिब्रेशन, इन एरियाज में डिजाइनिंग डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स बहुत कार्य किया है. आपको लगभग 35 वर्षों का एक बहुत अच्छा अनुभव है. आप जरूर 5 minutes में अपना अनुभव, थोड़ा सा समय की सीमा को देखते हुए, दूसरे सेशंस ना हो, हमें जरूर बताएंगे. आदरणीय खींची जी.
थैंक यू बहन. रेस्पेक्टेड डिग्निटरीज सिटिंग ऑन डायस चेयरपर्सन मिस्टर VV गायकवाड़ जी, फॉर्मर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मुंबई, एंड बहन BK शैली जी, राजयोगा एक्सपर्ट टीचर फ्रॉम अम्बाला, डॉक्टर NP सिंह former CGM of ONGC Vadodara, Nidhi Bahan, and learned and intellectual delegates and brothers and sisters. मेरे 35 साल के एक्सपीरियंस को सिर्फ 5 मिनट दिया गया है, लेकिन एनी हाउ आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट बिकॉज वी आर अहेड ऑफ द टाइम ऑलरेडी वी हैव पास्ट. आज जो चैलेंजेस हैं सस्टेनेबिलिटी के बारे में, और इसको प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय के टर्म्स में और मैनकाइंड के फायदे के लिए एक साइंटिस्ट का क्या पर्सपेक्टिव है, उस संदर्भ में मैं कुछ बातें मेन बातें काफी डिस्कशन करना चाह रहा था, लेकिन टाइम की कमी से मैं मेन बातें ही आपको कर पाऊंगा. व्हाट फर्स्ट हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी. सैली बहन ने सस्टेनेबिलिटी को बहुत ही सुंदर और सिंपल तरीके से समझा दिया है, और सिंह साहब ने एनर्जी के बारे में बहुत बिल्कुल हर तरह की एनर्जी स्टार्टिंग टू लेटेस्ट के बारे में भी बताया है. लेकिन हम एज ए बिल्कुल इंजीनियरिंग साइड से तो एनर्जी एफिशिएंसी होनी चाहिए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होनी चाहिए, गुड वेंटिलेशन होना चाहिए, और इस टर्म में हम लोग काफी बातें कर रहे हैं. और प्रजापिता ईश्वरी विश्वविद्यालय के संदर्भ में मैं ये कहूंगा कि हम जो मतलब जो भी साइंटिस्ट अपना अपना काम कर रहे हैं उसमें हमें मतलब जैसा सैली बहन ने बताया एक तितली और बच्चे का एग्जाम्पल दिया, काम साइंटिस्ट का मेन काम है टू मेक द ईज ऑफ लाइफ. आप अपने चारों तरफ देख लें, मतलब पिछले बिल्कुल 50 सालों से हमारी लाइफ में कितना ईज हुआ, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में हो, चाहे एनर्जी सेक्टर में हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, या आईटी सेक्टर्स में हो. मैं थोड़ा इन सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं. मैं एसटीक्यूसी लेबोरेटरी जयपुर में लेबोरेटरी हमारी एसटीक्यूसी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन डायरेक्टरेट. इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. पर्टिकुलरली मैंने जो काम किया है, मैंने टेस्टिंग कैलिब्रेशन और एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो बिल्कुल सिस्टम डिजाइन करने होते थे, मुझे पता है कि मेरा पहला जॉब जो आप जो आज लिफ्ट जो बिल्कुल देख रहे हैं 86 में माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम, एक बहुत छोटा सा छोटी जो लिफ्ट आप देख रहे हैं, मतलब उस टाइम हमने सोचा था कि 50 माले की लिफ्ट को हमने डिजाइन करना है, इलेक्ट्रॉनिकली उसको कंट्रोल करना है. दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, दैट वाज इन 1986. और आज तो इलेक्ट्रॉनिक्स बिकम ए वेरी यूजर फ्रेंडली एंड मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ने जीवन के हर क्षेत्र में एंट्री कर ली है. चाहे आप कहां भी देखिए, पहले पंखे देखिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स ने और आईटी ने लो पावर कंजप्शन एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में बहुत अच्छा काम किया है. जैसे अभी सिंह साहब ने बताया सोलर एनर्जी के बारे में, मैंने सोलर एनर्जी के जो मॉड्यूल्स जो टेस्ट किए थे, आज जो आप जो मॉडल देख रहे हैं वो हमने 1991 में टेस्ट कर लिए थे. इस साइज के जो मॉडल्स लगे हैं वो 440 वाट को प्रोड्यूस करता है एक सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, सोलर मॉड्यूल जिसको हम बोलते हैं. तो उसमें हमने एक तो होता है पॉलीक्रिस्टलिन, एक होता है मोनोलिथिक, दो टाइप के हैं आते हैं. और आप में से सभी लोग साइंटिफिक कम्युनिटी से हैं तो साहब बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स को बहुत ज्यादा नहीं तो मोटे मोटे तौर पे जानते हैं. और ये घर में यूज में आने वाली बिल्कुल चीज है. कोई भी चीज जो भी साइंस डेवलप करता है साइंटिस्ट उसके बारे में भी लगता है, लेकिन काम करते करते कुछ अच्छा ही करते करते कुछ बुराई भी हो जाती है. तो इसमें हमें स्पिरिचुअलिटी को अभी इन्वॉल्व करना है. और मैं आपको बताऊं कि जो 1998 में जो आज जो सोलर मॉड्यूल आप लोग देख रहे हैं घरों में, उससे 1/3 साइज का वो उसे 8 times ज्यादा एनर्जी को स्टोर करता है, जनरेट करता है. तो आप देखिए कि साइज इज इंपॉर्टेंट. पहले देखिए ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में आज से 50 साल पहले हमारी जो रोड्स डिजाइन हुई थी उनकी ये साइज नहीं थी कि उस टाइम ध्यान नहीं दिया गया था कि हमारे रोड की क्या साइज होगी और रोड पे कितने व्हीकल्स जाएंगे। आज बिल्कुल पार्किंग की समस्या हम लोग देख रहे हैं, तो ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो सस्टेनेबल मीन्स इट्स कोई भी सिस्टम हो उसको एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए, मैनकाइंड के यूज के लिए होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, और लाइफ को ईज बनाए और लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। आज आप देखिए कि और उसका पावर कंजप्शन बहुत लो होना चाहिए, हाइड्रोलिक पावर से एटॉमिक पावर से हम लोग आज सोलर पावर की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बताना हूं, आजकल रेलवे में बॉम्बे में कोई बॉम्बे से हैं तो इस तरह से देखा, हम जब चलते हैं मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूं, तो ये अपने जो पीवीसी के जो सॉल है, सूज के सॉल है, इट प्रोड्यूसेस किलो वोल्ट, ये किलो वोल्ट प्रोड्यूस कर, लेकिन बहुत ही छोटे समय के लिए, माइक्रो सेकेंड्स के लिए होते हैं। इसको स्टोरेज के लिए अभी रिसर्च चल रही है, अगर ये रिसर्च सक्सेसफुल हो जाती है तो इट विल बी वेरी गुड एनर्जी सोर्स फॉर द मैनकाइंड, और जितने भी एनर्जी सोर्स हैं और वो यूजर फ्रेंडली होंगे और इकोलॉजिकल होंगे और सेफ होंगे। कोई भी सिस्टम अपन डिजाइन बहुत अच्छा कर लें, बहुत अच्छी एफिशिएंसी है, लेकिन मैनकाइंड के लिए यूजर फ्रेंडली नहीं है और वो सेफ नहीं है। जैसे अभी सिंह साहब ने बताया कि हाइड्रोलिक हाइड्रोजन का प्रोडक्शन के लिए बहुत पहले आ गया था कॉन्सेप्ट, लेकिन हाइड्रोजन को नॉट यूजर फ्रेंडली, नॉट सेफ, तो इसलिए कमर्शलाइज नहीं हो पाया। कोई भी सिस्टम्स हो वो बिल्कुल यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए और एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए, और सबसे ज्यादा मैनकाइंड के लिए बिल्कुल फायदेमंद होना चाहिए। अब इस सिस्टम्स में हमारा, मैं इस कॉन्सेप्ट में अपना लेक्चर तैयार करके आया कि हमारा जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है इसमें क्या ऐड कर सकता है, वो उसमें किस तरह से सस्टेनेबिलिटी के साथ कैसे सहयोग कर सकता है। आज हम देख रहे हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉम्ब्स, एटम बॉम्ब्स, और आजकल एक दूसरे को सुपीरिटी को शो करने के लिए थर्ड वर्ल्ड वार के बारे में भी लोग सोच रहे हैं, यूक्रेन का और रशिया का आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन कभी कुछ प्रोड्यूस करते करते हम लोग भूल गए हैं, तो मानव को गौण कर दिया गया है, जबकि मनुष्य सबसे इम्पोर्टेंट है, मानव सेवा सबसे अच्छी सेवा है, हमारे इंडियन संस्कृति में कहा गया है। तो मैं और आपका ज्यादा लंबा टाइम नहीं देते हुए यही मैं अपने शब्दों को विराम करता हूं, और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस काम में बहुत अच्छा सहयोग कर रहा है और लोगों को एक अवेयर कर रहा है कि जो आप भी सिस्टम हैं जो डेवलप हो रहे हैं नए नए मैनकाइंड के लिए ईज ऑफ लाइफ के लिए, उसमें आप स्पिरिचुअलिटी डाल दें तो और विध्वंसकता की तरफ हम नहीं जाएंगे, हम पीस ऑफ माइंड की तरफ जाएंगे। आज हम दो दिन से देख रहे हैं, दो तीन दिन से हम लोग पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ लव, आई एम ए पावरफुल सॉल, आई एम ए हैप्पी सॉल, ये सब अपन जब देख रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी इसमें अपना बहुत बड़ा योगदान दे रही है सस्टेनेबिलिटी। तो इन्हीं शब्दों को मैं अपना विराम देते हुए आप सबको धन्यवाद करता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, आपने समय की मर्यादा को बहुत अच्छे से निभाया है। हाँ, आपके जानकारी के लिए मैं कुछ बातें जरूर बताऊंगी कि स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन जैसे साइंटिस्ट इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट विंग है, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों को साथ में लेकर के चल रहा है। हमारा जो जलजन अभियान है उसमें कितने ही गांवों को और जलाशयों को गोद लेकर के उनका पुनरुद्धार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक प्रोजेक्ट हमारा है क्लीन द माइंड एंड ग्रीन द अर्थ। तो माइंड क्लीन होगा तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो माइंड से निकला, पहले माइंड्स पोल्यूट हुए थे, तो किस तरह से हम एनवायरमेंट को पोल्यूशन से बचा सकते हैं, अपने माइंड को पहले क्लीन कर लें। एक हमारा प्रोजेक्ट है जो एग्रीकल्चर और रूरल विंग के अंडर में आता है, योगिक खेती। हमारे मनसा संकल्पों का पौधों के ऊपर क्या असर पड़ता है, ये अब एक एक्सपेरिमेंट नहीं रह गया, एक प्रूवन प्रिंसिपल बन चुका है। इसको कितने ही हमारे किसान भाई बहनें अपने खेतों में अपना चुके हैं और इसकी पैदावार आप देख रहे हैं कि जो बढ़िया बढ़िया सब्जियां आप खा रहे हैं बहुत सारी हमारे अपने ही आबू के खेतों से आ रही है। और जहां तक सोलर टेक्नोलॉजी की बात है, जब ये प्लांट लगाया गया था 1990s की बात है, आप थोड़ा समय निकाल करके शांतिवन से एक फरलांग की दूरी पर ही सोलर प्लांट है ब्रह्मा कुमारी, इसका बहुत नॉवल आइडिया है, आप जरूर उसको देखिएगा। जर्मन टेक्नोलॉजी से है, 1990s में इंस्टॉल किया गया था एंड देन इट वॉज द लार्जेस्ट सोलर प्लांट इन एशिया। सो वी आर रियली वर्किंग ऑन इट एंड अभी भी सेंटर्स पर जो हमारे गांव देहातों में सेंटर्स हैं उन्हों को भी ये प्रेरित किया जा रहा है कि आप किस तरह से छोटे से छोटा कुछ भी सोलर का पैनल लगाकर कुछ भी करके आगे बढ़ाएं। और ये शुरुआत की थी छोटी छोटी सोलर इमरजेंसी लैंप से, इतनी बड़ी इमरजेंसी लैंप हुआ करती थी सोलर की और हर सेंटर पर एक या दो पाई जाती थी। तो सस्टेनेंस को हम लोग वाकई लेकर के चल रहे हैं और जैसे भाई साहब ने सस्टेनेबिलिटी की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी, एक प्रोवर्ब है, सस्टेनेबिलिटी इज द बैलेंस बिटवीन एनवायरमेंट, इकोनॉमी एंड एथिक्स। तो एथिक्स तो स्पिरिचुअलिटी से ही आते हैं। अब मैं आग्रह करूंगी आदरणीय गायकवाड साहब से, आप चेयरपर्सन हैं, इस सारी चर्चा को आप कैसे समअप करेंगे, समय सीमा तो वाकई कम है। अभी हम सोलर टेक्नोलॉजी से वाटर की तरफ चलते हैं, आपने जल के संसाधनों में बहुत काम किया है, आप वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से सेक्रेटरी के रूप में रिटायर हुए हैं और इरिगेशन डिपार्टमेंट में आपने बहुत कार्य किया है, डैम कंस्ट्रक्शन, कैनाल्स, प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये सब आपने बहुत किया है। 52 इयर्स का आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। आज हम आपसे इस सारी चर्चा के विषय में सुनेंगे, समय जरूर कम है।
थैंक यू आदरणीय शैलू दीदी जी, डॉक्टर सिंह, खींची एंड फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक है जो शुरुआत में शैली भाई दीदी जी ने इतनी सुंदर तरीके से उसको एक्सप्लेन किया कि साइंटिस्ट कौन होता है, बेसिक उन्होंने क्वेश्चन किया कि साइंटिस्ट कौन होता है और उसने क्या करना चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल देके उन्होंने किया, एक तितली का एग्जांपल दिया और साइंटिस्ट की सोचने की दिशा आगे क्या रहनी चाहिए, जो हो गया हो गया, हर चीज तो साइंटिस्ट साइंस से डेवलप करने के बाद में हुआ है, उसके परिणाम दुष्परिणाम ज्यादा दिख रहे हैं आज, परिणाम के लिए किया अपन मगर दुष्परिणाम ज्यादा हो गए, पर उसको दोष न देते हुए वो दीदी ने ऐसा समझाया कि आगे क्या करना चाहिए, जो हो गया हो गया, आगे जो करना है वो हिसाब से किया है। तो वही उसका और एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि फर्टिलाइजर्स का, फर्टिलाइजर जब स्टार्टिंग में यूज किया क्योंकि अपना देश खाने पीने में बहुत दिक्कत होती थी तो अपन ग्रीन रेवोल्यूशन किए, ग्रीन रेवोल्यूशन में फर्टिलाइजर आया, फिर उसका अपना अपना जो बढ़ गया कि भाई पांच एकड़ एक एकड़ में अगर पांच पोते होते या गन्ने होते तो 50 कैसे होंगे, ये करते 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 पूरा अपन सॉइल को डैमेज कर दिया। तो उसको अपन छोड़ के अभी नया दिशा देखना चाहिए कि भाई सस्टेनेबल कैसा ये जो रिसर्च है होना चाहिए। दूसरा उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने एक मुर्गे के अंडे देने वाले मुर्गे का भी दोष दिया कि न हो जाए कि एकदम उसको ही खा जाए, उसको सस्टेनेबल रखना चाहिए। और मेन उन्होंने जो बात कही है कि प्रकृति जो है वो कॉम्पिटेंट है, आज अपन बोलते हैं कि वह 800 करोड़ की आबादी है पर अभी बगैर खाने का कोई मरता नहीं है आज, तो इसका मतलब प्रकृति सबको सस्टेन करने जैसी है, मगर ये ऐसे ही चलने देना है या उसको बदल करना है, ये बात मेन सोचने की है। आपका अपना जो ये जो कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस का जो मेन थीम है उसी के ऊपर बेस है, ये मैं थोड़ा आगे एलेबोरेट करूंगा। तो अपन इसलिए ओरिजिनल जो चीजें है उस तरफ अपन जाना चाहिए, रिसर्च जो है तो ओरिजिनल के तरफ जाना चाहिए और उसमें अध्यात्म की जोड़ होना चाहिए, साइंस और विज्ञान अगर एक साथ चलेंगे तो बहुत सी चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि अध्यात्म से अपनी मतलब अपनी जो हवास है वो कम हो जाएगी, और उससे प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और बाकी के काफी प्रॉब्लम्स दूसरे जो है वो भी कम हो जाएंगे। इतना अच्छी तरह से उन्होंने सस्टेन किया, आज जो है उसे वो ऐसे ही बचा के रखे और आगे के लिए यूज करना चाहिए। ऐसा सस्टेनेबिलिटी का इतना सिंपल एग्जाम्पल से दीदी ने एक्सप्लेनेशन किया। दूसरे डॉक्टर सिंह साहब ने एनर्जी के फील्ड में उन्होंने काफी काम किया है, तो उसके बारे में उन्होंने उसका पूरा एक सीन वर्ल्ड वाइड एनर्जी के डिफरेंट यूजेस जो है, सोलर एनर्जी रहो, गैस एनर्जी रहो, कोल एनर्जी रहो, इसका पूरा एक सब अपने सामने उसका एक पिक्चर रखा। उसमें उन्होंने एक अच्छी सी सीन बताई कि एनर्जी कंजम्पशन का जो पैटर्न है वो कैसे चेंज होते गया। पहले लकड़ी थी, फिर कोल आ गया, फिर गैस आ गया, फिर अभी पहले पानी के लिए झगड़ते थे, अब पानी से एनर्जी करने के पॉइंट आ गया है। तो ये तरीके से उन्होंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और उन्होंने बताया कि इंडिया में 52% कोल इंडिया में कंजम्पशन है, कोल का गैस CO2 का कंजम्पशन है। और अच्छी तरह से उन्होंने अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल पोल्यूटर्स कौन से है ये अच्छी तरह से उन्होंने बताया। तो उसके बाद में वर्ल्ड वाइड उन्होंने ये जो चर्चा होती है जो एनवायरमेंटल इश्यूज की, उसका भी उन्होंने काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी सब एस्पेक्ट्स को उन्होंने टच किया। तो उनका एक साइंटिफिक प्रेजेंटेशन रहा, थोड़ा सा मुझे लगता है अपना जो मेन टॉपिक है उससे थोड़ा डाइवर्टेड है, मगर नॉलेज के हिसाब से टोटल है। अपना जो मेन फोकस है कि आगे की दुनिया के लिए अपने को क्या करना है, वो हिसाब से उन्होंने प्रेजेंट सीन बताया है। अब जो साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि इसको कैसे आगे लेके जाना चाहिए, नए अपने जो नया युग के लिए अपने को इसको कैसा लेके जाना चाहिए, ये इसका एक बेस वर्क उन्होंने रखा। डॉक्टर मिस्टर खींची साहब है, ये टेस्टिंग के लैब के इंचार्ज है। ये जो लैब है मेरे ख्याल से ये जो टेस्टिंग होता है हर चीज की टेस्टिंग वहां होती है ना। आपका सेक्शन इलेक्ट्रॉनिक का है, मगर ये एक ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ने ऐसी बनाई है कि खाने पीने के सामान से लेके हर चीज की टेस्टिंग होती है, जिसको जो ISI का सिस्टम मिलता है या दूसरे कोई भी जो उनके जो कंपनी के जो सेल्स करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स है उसका पूर्ण टेस्टिंग की ये अथॉरिटी है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में काम करते हैं। तो उसका उन्होंने परिचय कर दिया कि ये इनके करियर में किस किस तरीके से उनका यूज किया। उनका एक मानना है कि इसमें अध्यात्म जोड़ना चाहिए, तो जो आगे की जो रिक्वायरमेंट है वो उसमें होना चाहिए। अब दो मिनट में मेरा थोड़ा सा ये जो है अपना जो टॉपिक है ये कॉन्फ्रेंस का, नए युग के लिए नई सोच, ये अपना मेन टॉपिक है। युग तो नया आने वाला है क्योंकि परमात्मा की ये क्रिएशन है, अभी कुछ ज्यादा दूर नहीं है। 100 साल में होता है या 50 साल में होता है या 200 साल में होता है मालूम नहीं है, होने वाला है क्योंकि ये साइकिल अब कंप्लीट होने आई है। ये जो अपनी साइकिल है 5000 साल की वो साइकिल कंप्लीट आई है, मगर ये जो नया युग आने वाला है उसके लिए अपनी तैयारी कितनी है और ये तैयारी करने के लिए बदल क्या करना चाहिए, इसकी सोच विचार करने के लिए एक ट्रिगर कर दिया है इन्होंने ये सेशन की वजह से। तो ये नए युग जाने के लिए नया विजन चाहिए, तो नया विजन के लिए पुराने कुछ चीजें छोड़ने पड़ेगी तो ही नहीं बनेगी। सब पूरा डिसमेंटल करके तो नहीं जा सकते क्योंकि नई दुनिया बन रही तो कोई नया प्लैनेट नहीं बनने वाला है, यही प्लैनेट को अपने को नई दुनिया बनानी है, यही मेरा कंसेप्ट है। ये प्लैनेट नया होने वाला नहीं है, सतयुग कोई तीसरे प्लैनेट पे जाना नहीं है, यही प्लैनेट को अपन सतयुग की दुनिया बनानी है। और सतयुग का जो अपना जितने भी कॉन्फ्रेंस हुआ है अपना उसपे जो पोस्टर है उसमें जो चित्र दिया है वो सतयुग के एक अपने सब कम्युनिटी का चित्र है, वो सब सुवर्ण में घर बने हुए हैं। तो वो अपना मेन एम है, जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो अपना एम है और ये होने के लिए अपने को अभी तैयारी करनी चाहिए और ये तैयारी परिवर्तन और पवित्रता के दैवी गुण प्राप्त करके ही अपने को करना है। और ये सब करने के लिए मैकेनिज्म चाहिए ना, ये इमेजिनरी नहीं है, ये कुछ तो भी कर्म करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। ये करने के लिए डेवलपमेंट चाहिए और डेवलपमेंट कैसी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। आज जो चल रही है वैसे ही कंटिन्यूअस होने से कोई फायदा नहीं है, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो मेन उसके तीन पिलर है, एक पिलर है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, दूसरी है सोशल सस्टेनेबिलिटी और थर्ड इज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के पीछे अपन भाग रहे, वो कोई भी प्रोडक्शन इकोनॉमिकल ऐसा होगा उसके पीछे अपन बहुत काम किया, मगर सोशल सस्टेनेबिलिटी पे बहुत काम कम हो गया है, तो वो करने की ज्यादा जरूरत है। इसलिए आपने ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो जो आदमी जिसके लिए अपन ये बदल कर रहे उसको वो पसंद है क्या, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है क्या, क्या उसकी रिक्वायरमेंट अपन चेंज करने जा रहे, उसकी जो नैसर्गिक रिक्वायरमेंट है उसको बदल करके उसकी आर्टिफिशियल रिक्वायरमेंट अपन पैदा कर रहे, ऐसी आज की अपनी प्रोडक्टिविटी है। तो ये करने का टाइम ये आ गया है। और बहुत सी बातें अपने एनवायरमेंटल पे बहुत चर्चा होती है, मगर उस पर रिकवरी करने का टाइम बहुत कम है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इतना ज्यादा होता है कि ये इसलिए ये जो भी सस्टेनेबिलिटी है इट शुड बी प्रॉफिटेबल एंड इट शुड बी ब्रॉड बेस्ड, जितने भी समाज के घटक है उसका यूज होना चाहिए और इट शुड बी पॉजिटिव एंड न्यूट्रल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। तो ये जो ये किसके थ्रू करेंगे, तो कोई तो सिस्टम होगी ना, कोई तो सिस्टम होगी, देते सिस्टम इज ए वेरी ब्रॉड वर्ल्ड। सिस्टम में अभी वर्ल्ड में कम से कम करोड़ों सिस्टम्स है, मैं खुद एक सिस्टम हूं, मेरी फैमिली एक सिस्टम है, मेरा समाज एक सिस्टम है, मेरा देश एक सिस्टम है, हर सिस्टम एक सिस्टम से चलते हैं। जैसे बाहर से कभी जाएंगे तो बोलते हैं भाई ये ब्रह्म कुमारी के एक सिस्टम से चलते हैं, वहां सिस्टम से बोलते हैं दे हैव गॉट सम प्रिंसिपल्स, दे वर्क ऑन दैट प्रिंसिपल्स। सो ए सिस्टम जो है तो सिस्टम ये अनेक सब सिस्टम का इंटरलिंकिंग होती है, बहुत से सिस्टम उसमें आ जाते हैं। तो ये सस्टेनेबल सिस्टम है, तो इसका मतलब है कि हर एक छोटी सिस्टम का पार्ट, एक छोटी सिस्टम भी सस्टेनेबल चाहिए और बड़ी सिस्टम भी सस्टेनेबल चाहिए। और ये जैसा कंप्यूटर सिस्टम है, सैटेलाइट सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, ये बहुत से सिस्टम्स है, मगर सब सिस्टम का मिलके ये दुनिया है और दुनिया जो चलने वाली है उसको अपने को चेंज करना है। और ये सब चेंज करने का जो मेन रोल है वो साइंटिस्ट का है, इसलिए ये जो टॉपिक चुना है इतना बड़ा टॉपिक है कि साइंटिस्ट परसेप्शन हाउ टू चेंज दिस वर्ल्ड, ये चेंज का जो मोटो है, चेंज का जो फोकस है, चेंज का जो विजन है, ये नाउ दिस इज क्लियर, चेंज अपने को अपनी सतयुग की दुनिया बनानी है, दिस इज द चेंज। और ये करने के लिए साइंटिस्ट ने सोचना चाहिए कि उसका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, हर आइटम में कमर्शियल पर्सपेक्टिव छोड़ के ये पर्सपेक्टिव के हिसाब से अपन अगर काम करेंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। और अपने में उतना टैलेंट है अपन कर सकते हैं, इसमें मेनली वैल्यूज इंक्लूड करना चाहिए और विज्ञान और अध्यात्म साथ साथ अगर चलेंगे तो ये जल्दी पाना आसान होगा। एक होने वाला तो है ही, इसमें कोई फर्क नहीं है, परमात्मा ने डिसाइड किया है ये ऐसे ही होने वाला है। जल्दी करना है या आराम से करना है, या कोई तकलीफ लेके करना है या प्यार से करना है, या सब अपने ऊपर निर्भर है। तो इसका मेन जो रोल दिया है वो साइंटिस्ट को दिया है, और ये चर्चा करने की जिम्मेदारी अपने सब पर आई, अपन आए हैं। टाइम कम, टॉपिक इतना बड़ा है, कितना भी डिस्कशन करेंगे तो कम है, तो कम टाइम में नटशेल में अपने डिस्कस किया, इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गायकवाड़ साहब, आपने बहुत सुंदर बात कही। एक बात आपने कही कि आर्टिफिशियली हम जो है डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, और ये आर्टिफिशियली डिमांड ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर रही है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा रियल इंटेलिजेंस की बात करें। आज हमने वायरलेस टेक्नोलॉजी, आपने एक टेक्नोलॉजी की भी बात करी, हमें चाहिए स्वर्ग में एक टेक्नोलॉजी चाहिए, वायरलेस टेक्नोलॉजी वी हैव, नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स वॉइसलेस टेक्नोलॉजी विच वुड बी ऑटोमेटिकली वेरी मच मोर एडवांस्ड देन व्हाट वी हैव टुडे। सो एक्चुअली इस सारी चर्चा का एक सम टोटल बस इतने ही शब्दों में कर सकते हैं, I don't want to protect the environment, I don't want to sustain the environment, I want to create a world where the environment doesn't need protecting. So let us usher into this world, and it's not 200 away sir, it is very near and very near. Hum करेंगे हम पाएंगे, और हम नहीं करेंगे तो भी भगवान को तो कार्य अपना पूरा करना ही है, वो अपने समय से कार्य पूर्ण होता ही है। तो थैंक यू वेरी मच। एंड मैं बहनों से अनुरोध करूंगी ईश्वरीय सौगात हमारे माननीय मंचासीन अतिथियों को प्रदान करेंगे। आप सभी के लिए एक बहुत सुंदर सेशन अभी होने वाला है ग्लोबल ऑडिटोरियम में, अनलीशिंग द क्रिएटिविटी विद इन। कैसे अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालें, सभी तालियों के साथ में इस समारोह में भागीदार बनेंगे। हम सीधे ही यहां से उठकर ग्लोबल हार्मनी हॉल में जाएंगे। हम एक मिनट परमात्मा की याद से समापन करेंगे।